सबको आवाज आ रही? तो कल विशेष दिन है राधाष्टमी का, तो उसी उपलक्ष में हम लोग सुनेंगे श्रीमती राधा के बारे में। तो जो ग्रंथ मेरे पास है वो ब्रह्म है, वैवर्त पुराण है, उसमें बहुत विस्तृत वर्णन है राधा रानी का। तो उसमें से कुछ बातें मैं पढ़ के सुनाऊंगा। तो ये घटना उस समय की है जिस समय पृथ्वी के ऊपर असुरों का भार बढ़ गया। पृथ्वी देवी बहुत दुखी और रोती हुई ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को और धर्म देवता को साथ लेकर के गोलोक धाम जाते हैं। गोलोक धाम में भगवान कृष्ण हैं, तो वहां जाकर के भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, और भगवान आदेश देते हैं, सबको आदेश देते हैं पृथ्वी में जन्म लेने के लिए। तो उसमें राधा रानी को भी आदेश देते हैं, भगवान राधा रानी को आदेश देते हैं। तो सुनिए भगवान राधा रानी से क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, राधिके तुम भी शीघ्र ही वृषभानु के घर पधारो। मतलब वृषभानु के घर में क्या करोगे, जन्म लो। तो भगवान कह रहे हैं वृषभानु के घर पधारो। वृषभानु की प्यारी स्त्री बड़ी साध्वी है, उसका नाम कलावती है। कलावती लेकिन कीर्तिदा भी नाम, कीर्तिदा नाम ज्यादा प्रसिद्ध है। वे लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई है, नारियों में धन्या है और मान्या है। तुम उन्हीं कीर्तिदा की पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो, भगवान राधा रानी से कहते हैं, है ना। ऐसा आदेश भगवान सबको नहीं देते। हम जितने जीव हैं जन्म ग्रहण करते हैं अपने कर्म के अनुसार और कष्ट के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन जब भगवान राधा रानी को आदेश देते हैं तो कर्मों के अनुसार नहीं है ये उनका जन्म, ना कष्टों के साथ जन्म है। उनका शरीर हमारे जैसा भौतिक शरीर नहीं है, है ना। तो भगवान राधा रानी से कहते हैं, अब शीघ्र नंद ब्रज में जाओ। देवी मैं बालक रूप से वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। किससे कह रहे हैं भगवान? राधा रानी से कह रहे हैं। कहां पर हैं इस समय? कहां पर हैं? गोलोक धाम में। गोलोक धाम में है भगवान। राधे मैं तुम्हें प्राणों से भी अधिक, नहीं, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो और मैं भी तुम्हें प्राणों से भी बढ़कर प्यारा हूं। दोनों एक दूसरे के प्यारे हैं, प्राणों से अधिक प्यारे दोनों एक दूसरे के हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, राधे तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो और मैं भी तुम्हें प्राणों से भी बढ़कर प्यारा हूं। हम दोनों का कुछ भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है, हम सदैव एक रूप हैं। ये सुनकर राधा प्रेम से बेहमल होकर वहां रो पड़ी। रोपणी प्रेम से बेबल होकर रोपणी है। क्यों रोई? क्योंकि कुछ समय के लिए तो भगवान से दूर होना पड़ रहा है, बाद में तो मिलेंगे भगवान, लेकिन अभी जो मिलन है वो तो मिट रहा है, अभी तो दूर जाना पड़ेगा। तो राधा रानी प्रेम से बेबल होकर रोपणी अपने नेत्रों के द्वारा श्री हरि के मुख के सौंदर्य का पान करने लगे। नेत्रों के द्वारा पीती हैं, भगवान की सुंदरता को पीती हैं। कहाँ कहाँ से? नेत्रों के द्वारा पीती हैं। श्री राधा श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर विराजमान थी। उनका आसन कहाँ पर है? यहाँ श्री राधा श्याम सुंदर के वक्षस्थल में विराजमान थी, इसी समय राधा अपने प्रियतम से बोली। अब राधा रानी क्या बोलती हैं? ये जब बातें हैं ये संसार की नहीं है, भगवान राधा रानी से कुछ बात बोलते हैं तो ये बातें जो है इस भौतिक संसार की नहीं है, राधा रानी भगवान से बोलती हैं, इस संसार की बातें नहीं है। सुनो बहुत दिव्य। राधा ने कहा, नाथ मैं कुछ कहना चाहती हूँ, प्रभु इस दासी की बात सुनो, मेरे प्राण चिंता से जल रहे हैं। कौन कह रहे हैं? राधा रानी। मेरे प्राण चिंता से जल रहे हैं, चित्त चंचल हो रहा है, तुम्हारी ओर देखते समय मैं पल भर के लिए आंख बंद करने या पलक मारने में असमर्थ हो जाती हूँ। मतलब इतना थोड़ा सा वियोग भी मुझे सहन नहीं होता है। कितना वियोग? पलक मारने का, पलक मारने का वियोग भी मुझे सहन नहीं होता। सोचिए कितना प्रेम। हम देखते हैं किसी चीज को तो पलक मारने में कोई बाधा नहीं पड़ती है, एक सेकंड का 72वां हिस्सा होता है जो निमेश काल बोलते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? पलक अगर हमारी बंद हो जाती है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है देखने में। राधा रानी को कृष्ण को देखने में पलक मारने का भी जो है बहुत कष्ट है, हैं? इतना भी कष्ट वो सहन नहीं कर सकते हैं, हैं? तो पलक मारने में असमर्थ हो जाती हूँ, फिर प्राणनाथ तुम्हारे बिना भूतल पर अकेले कैसे जाऊंगी। चिंता, क्या चिंता है? कृष्ण के बिना राधा कैसे इस भूतल पर आएंगी? कृष्ण के साथ ही रहती हैं गोलोकधाम में, कैसे आएंगी? प्राणेश्वर जीवन बंधो सच बताओ, वहां गोकुल में कितने समय पश्चात तुम्हारे साथ मेरा अवश्य मिलन होगा, ये भी बताओ। और सच बताओ कितने समय के बाद क्या होगा मिलन? तुम्हें देखे बिना एक निमेश भी मेरे लिए 100 युगों के समान होगा। एक निमेश का यही पलक बंद करने का समय है। इतना समय 100 युगों के समान होगा मेरे लिए। अब बताइए कितने समय के बाद? अगर एक निमेश काल 100 युगों के बराबर है, हैं? तो 72वां हिस्सा है एक सेकंड का, तो एक सेकंड में कितने हो गए? 7200 युग। और एक युग कितना होता है? 43,20,000 साल का। तो 100 युग कितने हो गए? 43 करोड़ साल, हैं? 33 करोड़ साल, 43 करोड़ साल स्वयोग। तो एक सेकंड का 72वां हिस्सा राधा रानी के लिए 43 करोड़ साल के बराबर है। कृष्ण के बिना कितना मतलब आश्चर्य है। तुम्हें देखे बिना एक निमेश भी मेरे लिए 100 युगों के समान होगा। वहां मैं किसे देखूंगी? क्या वहां पर मैं किसे देखूंगी? आपके बिना मैं किसे देखूंगी? कहां जाऊंगी और कौन मेरी रक्षा करेगा? प्राणेश, तुम्हारे सिवा दूसरे किसी पिता माता भाई बंधु बहन अथवा पुत्र का मैं क्षण भर भी चिंतन नहीं करती हूं। राधा रानी कहती हैं, कृष्ण के बिना ये किसी भी पिता माता भाई बंधु बहन पुत्र का क्षण भर भी चिंतन नहीं करती हूँ। हे देव, यदि तुम भूतल पर मुझे भेजकर दूर कर भुनाना चाहते हो तो मेरे समक्ष सच्ची प्रतिज्ञा करो। अब मुझे अगर भेज रहे हो तो मेरे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करो। मधुसूदन, मेरा मन तुम्हारे चरण कमल में नित्य निरंतर भ्रमण करता रहे। अगर तुम मुझे भुला दो तो मैं क्या करूं? मुझे प्रतिज्ञा, मेरे सामने प्रतिज्ञा करो कि मेरा मन क्या हो? तुम्हारे चरण कमल में नित्य निरंतर लगा रहे मेरा मन। जहां जहां जिस योनि में भी मेरा जन्म हो। अगर तुमने मुझे भुला दिया तो मैं संसार में कहां जाऊंगी? जहां जहां जिस योनि में मेरा जन्म हो वहां वहां तुम मुझे अपना स्मरण और दास्य भाव प्रदान करोगे। ये प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करो? कि मैं जहां भी रहूं, अब मुझे अगर तुम भुला दो तो मैं तुम्हें ना भूलूं, ये प्रतिज्ञा करो। अगर तुम मुझे भूलना चाहते हो तो प्रतिज्ञा करो कि मैं तुम्हें ना भूलूं। मैं भूतल पर कभी भी इस बात को ना भूलूं कि तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हो, मैं ना भूलूं। अगर तुम भूल जाओ और तुम भूलना चाहो तो तुम्हारी इच्छा, लेकिन मैं कभी ना भूलूं। क्या ना भूलूं? कि तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हो और मैं तुम्हारी प्रेयसी राधिका हूं, और हम दोनों का प्रेम सौभाग्य शाश्वत है। प्रभु ये उत्तम वर मुझे अवश्य दो, तब मुझे अपने से दूर करो। राधा रानी कह रही, जैसे शरीर छाया के साथ रहता है कि नहीं, शरीर हमेशा छाया के साथ रहता है और प्राण शरीर के साथ रहते हैं, उसी प्रकार हम दोनों का जन्म और जीवन एक दूसरे के साथ बीते। ये श्रेष्ठ वर मुझे दे दो भगवान, भूतल पर पहुंचकर भी कहीं हम दोनों का पल भर के लिए भी वियोग ना हो, ये वर मुझे दो। हे देव, मेरे प्राणों से ही तुम्हारा शरीर बना है। तुम्हारा शरीर कैसे बना है? मेरे प्राणों से। मेरे प्राण तुम्हारे शरीर से अलग नहीं है। मेरी इस धारणा का कौन निवारण कर सकता है? मेरे शरीर से ही तुम्हारी मुरली बनी है, बंसी है। किससे बनी है? मेरे शरीर से बनी है, और मेरे मन से ही तुम्हारे चरणों का निर्माण हुआ है। मेरे मन से ही तुम्हारे चरणों का निर्माण हुआ है, मैं तुम्हारी मुरली को अपना शरीर समझती हूँ और तुम्हारे चरणों को ही मैं अपना मन समझती हूँ। संसार में कितने ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो सामने एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, परंतु कहीं भी अपने प्रीतम में निरंतर आसक्त रहने वाली मुझ जैसी प्रेयसी नहीं है। इस संसार में कहीं नहीं है मेरी जैसी प्रेयसी जो नित्य निरंतर अपने प्रियतम में आसक्त हो। तुम्हारे शरीर के आधे भाग से किसने मेरा निर्माण किया है? हम दोनों में अभेद है, हम दोनों में भेद है ही नहीं, अतः मेरा मन निरंतर तुम्ही में लगा रहता है। मेरी आत्मा, मेरा मन और मेरे प्राण जिस तरह तुम में स्थापित हैं, उसी तरह तुम्हारे मन, प्राण, आत्मा भी मुझ में ही स्थापित हैं। अतः ब्रह्म की बात कान में पड़ते ही आंखों का पलक गिरना बंद हो गया है और हम दोनों के मन प्राण निरंतर दग्ध हो रहे हैं। इतनी बात कही किसने? कही राधा रानी ने कही। तो श्री कृष्ण बोले, श्री कृष्ण बोले, देवी उत्तम आध्यात्मिक योग शोक को दूर करता है, अतः उसे बताता हूं। सुनो, ये योग योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सुंदरी देखो, सारा ब्रह्मांड आधार है, सारे ब्रह्मांड का कोई आधार है, फल का आधार, फल का आधार है फूल, फल का आधार है फूल, और फूल का आधार है पल्लव, और पल्लव का आधार है तना या डाली, और उसका भी आधार स्वयं वृक्ष है। वृक्ष का भी आधार अंकुर है, और उसका आधार बीज है, और बीज का आधार पृथ्वी है, पृथ्वी के आधार शेषनाग है, शेषनाग के आधार कच्छप है, कच्छप के आधार वायु है, वायु का आधार मैं हूं, और मेरी आधार तुम हो। हरि बोल। क्योंकि मैं सदा तुम में ही स्थित रहता हूं, तुम मेरी शक्ति हो, मूल प्रकृति हो, ईश्वरी हो, मैं तुम्हारा आत्मा हूं, तुम्हारा संयोग प्राप्त करके ही चेष्टा करता हूं। शरीर के बिना आत्मा कहां, आत्मा के बिना शरीर कहां। देवी, शरीर और आत्मा दोनों की प्रधानता है, बिना दो के संसार कैसे चल सकता है। हम दोनों में कहीं भेद नहीं है, जहां आत्मा है वहां शरीर है, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे दूध में सफेदी अलग नहीं होती, अग्नि में जलन अलग नहीं होती, पृथ्वी में गंध, जल में शीतलता, उसी प्रकार तुम में मैं हूं, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर मैं हूं। जैसे दूध में सफेदी और अग्नि में जलन, पृथ्वी में गंध, जल में शीतलता, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर मैं हूं। मेरे बिना तुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हूं। सुंदरी, तुम्हारे बिना मैं संसार की सृष्टि नहीं कर सकता, ये निश्चित बात है। ठीक उसी तरह जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता, कुम्हार घड़ा बनाता है मिट्टी से, उसी प्रकार कृष्ण सृष्टि बनाते हैं राधा रानी की सहायता से। और सुनार सोने के बिना आभूषण नहीं बना सकता, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना सृष्टि नहीं बना सकता। आत्मा जैसे नित्य है, उसी प्रकार प्रकृति स्वरूप तुम भी नित्य हो, तुम में संपूर्ण शक्तियों का संचय है, तुम सबके आधार हो और सनातन हो। यथा क्षीरे चा धावल्यम दायिका चा हुताशने भूमो गंधो जले शैत्यम तथा त्वयि मम स्थिति। धावल्य दुग्ध और ऐक्यम दायिका नलयोर यथा गभुगंध जल शैत्यानाम नास्ति भेदस्तथा वयो। मया बिना त्वं निर्जीवा चादृश्यो हम त्वया बिना भवं कर्तुं नालं सुंदरी निश्चितं। बिना मृदा घटं कर्तुं तथा नालं कुलालकः बिना स्वर्णं स्वर्णकारो लंकारं कर्तुं अक्षमः। स्वयं आत्मा यथा नित्यः तथा तुम प्रकृति स्वयं सर्वशक्ति समायोक्ता सर्वाधारा सनातनी। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और धर्म, ये सब मेरे प्राणों के समान हैं। कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं। किससे? राधा रानी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और धर्म, ये सब मेरे प्राणों के समान है, परंतु तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारी हो। राधिके, ये सब देवता और देवियां मेरे निकट हैं, परंतु तुम यदि इनसे अधिक ना होती तो मेरे वक्षस्थल पर कैसे विराजमान हो सकती थी। राधे, आंसू बहाना छोड़ो, साथ ही इस भ्रम का परित्याग करो, संकट छोड़कर निर्भीक होकर वृषभानु के घर में पधारो। सुंदरी, 9 महीने तक कीर्तिदा के पेट में स्थित गर्भ को माया द्वारा वायु से भरकर रोके रहो। कीर्तिदा के पेट में वायु भरकर 9 महीने तक रोके रहो, ये मतलब पेट बड़ा है, गर्भ दिखाई देगा, गर्भ है। 10वां महीना आने पर तुम भूतल पर प्रकट हो जाना, यानी तुम गर्भ में नहीं रहोगी। भगवान कह रहे राधा रानी से, तुम माता के गर्भ में नहीं रहोगी, माता के गर्भ को वायु से भर देना, और गर्भ जो है वो बड़ा दिखाई देगा। लेकिन दसवा महीने आने पर तुम बालिका बन करके प्रकट हो जाना, सब लोग समझेंगे कि गर्भ से पैदा हुई, लेकिन तुम गर्भ से नहीं पैदा होगी। गर्भ से तो पैदा होते हैं ऐसे बच्चे जिनको शरीर बनाना होता है, उनका शरीर बनता है ना, मांस खून का शरीर जिनको चाहिए उनको गर्भ के अंदर आना पड़ता है। मांस खून हड्डी इन चीज़ों का शरीर बनता है, 9 महीने तक शरीर बनता है, फिर जब बन जाता है तो फिर बाहर निकलता है। तो राधा रानी का शरीर थोड़ी वैसा है, उनका शरीर तो दिव्य है। तो भगवान क्या कह रहे राधा रानी से कि माता के गर्भ में वायु भर देना और दिखाई देगा कि गर्भ में कन्या है, लेकिन 10वां महीना आने पर तुम बालिका का रूप धारण करके प्रकट हो जाना, कि तुम्हारा शरीर तो सनातन है, नित्य है, शाश्वत है। तो भगवान कह रहे हैं अपने दिव्य रूप का परित्याग करके शिशु रूप धारण कर लेना। दिव्य रूप है ना, कितना दिव्य रूप है राधा रानी का, आभूषण है, वस्त्र है, कैसा है, लेकिन वो त्याग करके शिशु का रूप धारण कर लेना, नग्न बालिका के रूप में। जब गर्भ से वायु के निकलने का समय हो तब कीर्तिदा के समीप पृथ्वी पर नग्न बालिका के रूप में गिरकर निश्चय ही रोना, रोने का भी अभय करना है तुम्हें। बच्चा या बच्ची जब रोते हैं तो अभिनय थोड़ी करते हैं, सचमुच उनको कष्ट होता है, लेकिन भगवान के दिराधा से तुम्हें थोड़ी कष्ट है कोई, लेकिन तुम्हें क्या अभिनय करना है, रोने का, रोना। साध्वी तुम गोकुल में अयोनिजा रूप से प्रकट होगी। अयोनिजा योनिजा का मतलब माता के गर्भ से पैदा होना, लेकिन तुम अयोनिजा, अयोनिजा मतलब माता के गर्भ से नहीं पैदा हो। मैं भी अयोनिज रूप से ही अपने आप को प्रकट करूंगा, क्योंकि हम दोनों का गर्भ में निवास करना संभव नहीं है। कि राधा रानी का शरीर भी नित्य है, दिव्य है, और कृष्ण का भी शरीर नित्य है, दिव्य है, तो गर्भ में थोड़ी कृष्ण आएंगे, राधा रानी थोड़ी गर्भ में आएंगे, लेकिन लीला करते हैं, गर्भ में आने की लीला करते हैं। गर्भ में हम लोग जाते हैं और हम कष्ट भोगते हैं। कललम तो एक रात्रेण पंच रात्रेण बुद्बुदम तथा हे न तो करकंधु पेशिंडम वा तथा परम। एक रात्रि में रज और वीर का मिश्रण होता है, पांच रात्रि में बुलबुला बनता है, दशा हेन तो करगंधु 10 दिन में जो है वो करगंधु बेर की तरह आकार होता है, है? पेशेंडम बात था परम, फिर मांसपेशी बनती है, उसके बाद फिर जो है मांसे ने तो सिरो ध्याभ्याम, 1 महीने में सिर बनता है, 2 महीने में, 2 महीने में बाहु अंग्री पैर और हाथ ये सब बनते हैं। तो ये तो हम लोगों का है, हम लोगों का हाल है, लेकिन राधा कृष्ण का हाल थोड़ी ऐसा है। राधा कृष्ण का जो शरीर है वो तो दिव्य है, इसलिए वो क्यों गर्भ में आएंगे, राधा रानी क्यों गर्भ में आएंगी, कृष्ण क्यों गर्भ में आएंगे, इन लीला करते हैं, हैं? तो भगवान कहते हैं हम दोनों का गर्भ में निवास होना संभव नहीं है, मेरे भूमि पर स्थित होते ही पिताजी मुझे गोकुल में पहुँचा देंगे, मैं भी नग्न बालक का रूप धारण करूंगा, तो पिताजी मुझे कहाँ से गोकुल ले जाएंगे, मथुरा से, मथुरा से मुझे गोकुल पहुंचा देंगे। वास्तव में कंस के भय का बहाना लेकर मैं तुम्हारे लिए ही गोकुल में जाऊंगा। बहाना है कंस का भय है कि कंस जो है मार डालेगा बालक को, इस भय से वसुदेव जी कृष्ण को ले जाते हैं, यह तो बहाना है, उनको उनको कंस का क्या भय, हजारों कंस क्या करेंगे उनका। कंस के भय का बहाना लेकर मैं आऊंगा किस लिए, तुमसे मिलने के लिए। कल्याणी तुम वहां यशोदा के मंदिर में मुझ नंद नंदन को प्रतिदिन आनंद पूर्वक देखोगी और हृदय से लगाओगी। राधे के मेरे वरदान से तुम्हें समय पर मेरी स्मृति होगी और मैं तुम्हारे साथ वृंदावन में नित्य स्वच्छंद विहार करूंगा और तुम्हारी जितनी सखियां और अन्य अन्य गोपियों के साथ तुम गोकुल को पधारो। तुम अकेली नहीं जा रही हो, तुम्हारे साथ में सब सखियां यहां से जा रही हैं और गोपियां भी जा रही हैं गोकुल में। असंग गोपियों को अपने वाणी द्वारा समझा बुझाकर आश्वासन देकर गोलोक में ही रखकर तुम्हें गोकुल में जाना है। बहुत सी गोपियां तो तुम्हारे साथ जाना चाहती हैं लेकिन तुम उनको समझाओ कि नहीं नहीं तुम मत जाओ। भगवान राधा रानी से क्या कह रहे हैं, तुम्हारी बहुत सी सखियां हैं असंख्य हैं जो तुम्हारे साथ जाना चाहती हैं, उनको तुम समझाओ कि नहीं तुम्हें यही रहना है। हैं राधिके, मैं भी असंख्य गोपों को यही स्थापित करके पीछे से वसुदेव के निवास स्थान मथुरापुरी में जाऊंगा। मेरे साथ ही बहुत से गोप आना चाहते हैं तो मैं उनको भी समझाऊंगा कि नहीं तुम लोग यहीं रहो। मेरे प्रिय गोप बहुत बड़ी संख्या में मेरे साथ क्रीड़ा के लिए ब्रज में चले हैं। हो गया ना? क्या सुना? कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? राधा रानी से कह रहे हैं। हाँ, यूं कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। देवता देवियां गोप और गोपियां वहीं ठहर गईं। ब्रह्मा शिव धर्म शेषनाग पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती ने बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण की स्तुति की। उस समय उनके विरह से व्याकुल और प्रेम विह्वल गोपों और गोपियों ने भी भक्तिभाव से वहाँ श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया। विरह से कातर हुई राधा ने भी अपने प्राणाधिक प्रियतम हृदय वल्लभ श्री कृष्ण का भक्तिभाव से स्तवन किया। उस समय श्री राधा के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे, अत्यंत दीन और भय से व्याकुल दिखाई देती थीं। उन्हें इस अवस्था में देख स्वयं श्री कृष्ण ने सांत्वना देने के लिए ये सच्ची बात कही। तो कृष्ण राधा को समझाया लेकिन अभी भी रो रही हैं, तो कृष्ण और बोल रहे हैं। क्या बोले? श्री कृष्ण बोले, हे देवी स्थिर हो, भय का त्याग करो, जैसी तुम हो वैसा ही मैं हूं। तो मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता है? श्री दामा के साप को सत्य करने के लिए कुछ समय तक मेरे साथ तुम्हारा वियोग रहेगा, तब मैं मथुरा में आ जाऊंगा। वहां भूतल का भार उतारना, माता पिता को बंधन से छुड़ाना, माली दर्जी और कुब्जा का उद्धार करना, कालेवन को मरवाकर मुचकुंद को मोक्ष देना, द्वारका का निर्माण करना, राजसूय यज्ञ का दर्शन करना, 16,110 राजकन्याओं के साथ विवाह करना, शत्रुओं का दमन करना, मित्रों का उपकार करना, वाराणसीपुरी का दहन करना, महादेव जी को अस्त्र से बांधना, बाणासुर के भुजाओं को काटना, पारिजात का अपहरण करना, अन्य अन्य कर्म कर संपादन करना, प्रभास तीर्थ की यात्रा में जाना, वहाँ मुनि मुनियों का दर्शन करना, ब्रज के बंधुओं से वार्तालाप करना, पिता के यज्ञ कर संपादन करना, वहीं पुनः तुम्हारे साथ मिलन होगा, वहीं मेरा तुमसे फिर से मिलन होगा, फिर तुम्हें अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देकर वास्तव में तुम्हारे साथ नित्य मिलन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। इसके बाद मेरे साथ दिन रात तुम्हारा संयोग बना रहेगा, कभी क्षण भर के लिए भी वियोग नहीं होगा। इतना ही नहीं, वहां से तुम्हारे साथ मेरा पुनः ब्रज में आगमन होगा। प्राण वल्लभे वियोग काल में भी स्वप्न में तुम्हारे साथ मेरा सदैव मिलन होता रहेगा। क्या भगवान राधा रानी से क्या कह रहे हैं कि वियोग की अवस्था में भी स्वप्न में हमेशा तुमसे मैं मिलूंगा, और स्वप्न में अगर कृष्ण मिलेंगे तो उनका सचमुच मिलन है ना। तुमसे बिछुड़कर द्वारका जाने पर मेरे द्वारा ये सब कार्य होंगे, फिर वृंदावन में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा, फिर माता पिता और गोपियों का शोक पूरी तरह से दूर होगा, भूतल का भार उतार कर तुम्हारे और गोप गोपियों के साथ मेरा पुनः गोलोक में आगमन होगा। राधे देवताओं और देवियों के अंश भी अपने धाम को पधारेंगे, फिर इसी गोलोक में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। इस प्रकार समस्त शुभ अशुभ का वर्णन मैंने कर दिया। मेरे द्वारा जो निश्चय हो चुका है उसका कौन निवारण कर सकता है। इसके बाद भगवान ने देवताओं से कहा, देवताओं अब तुम लोग आगे कार्य की सिद्धि के लिए अपने अपने स्थान को जाओ। पार्वती तुम अपने दोनों पुत्रों और स्वामी के साथ कैलाश को जाओ। पार्वती के दोनों पुत्र हैं, हाँ इधर हैं दोनों पुत्र, देख रहे हैं दोनों पुत्र हैं। कौन है दोनों पुत्र? कार्तिकेय गणेश। तो भगवान कह रहे हैं पार्वती तुम अपने दोनों पुत्रों और स्वामी के साथ, स्वामी कौन है? शिव जी के साथ कैलाश को जाओ। मैंने जो कार्य तुम्हारे जिम्मे लगाया है वो सब यथासंभव पूरा होगा। राधे गणेश जी को छोड़कर शेष छोटे बड़े सभी देवताओं और देवियों का भूतल पर अवतरण होगा। तब लक्ष्मी सरस्वती और राधा सहित श्री कृष्ण को भक्ति भाव से प्रणाम करके सब देवता आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। श्री कृष्ण ने जिस कार्य का आयोजन किया था उसे सफल बनाने के लिए वे भूतल पर पधारे, क्योंकि स्वामी का बताया हुआ स्थान देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। अब श्री कृष्ण ने राधा से कहा, देखो कितनी लंबी बातें होती हैं, भगवान राधा रानी से कितनी लंबी बातें कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको सांत्वना देना है। श्री कृष्ण ने राधा से कहा, प्रिय तुम पूर्व निश्चित गोप गोपियों के साथ वृषभानु के निवास गृह को पधारो। मैं मथुरापुरी में वसुदेव के घर जाऊंगा, फिर कंस के भय का बहाना बनाकर गोकुल में तुम्हारे समीप आ जाऊंगा। कमल के समान नेत्रों वाली श्री राधा श्री कृष्ण को प्रणाम करके विरह के भय से कातर हो उनके सामने फूट फूट कर रोने लगी। वे ठहर ठहर कर कभी कुछ दूर तक जाती और जा जाकर बार बार लौट आती थी। उनको बहुत भय है, राधा रानी को बहुत भय है, कृष्ण को छोड़ करके जाना है और कृष्ण की आज्ञा है, आज्ञा का पालन करना है, लेकिन यहाँ विरह का भय, तो फिर से बार बार आ जाती हैं, निकट आ जाती हैं, लौट कर पुनः श्री हरि का मुंह देखने लगती हैं। राधा पूर्णिमा के चंद्रमा की कांति सुधा से पूर्ण कृष्ण के मुख चंद्र की सौंदर्य माधुरी का अपने नेत्रों द्वारा पान करती थी। तब राधा श्री कृष्ण की 7 बार परिक्रमा करके 7 बार प्रणाम करके पुनः श्री कृष्ण के सामने खड़ी हुई। अभी भी नहीं जा रही, 7 बार परिक्रमा करी, 7 बार प्रणाम किया, फिर खड़ी हुई। इतने में ही करोड़ों गोप गोपियों का समूह है वहां पर आ पहुंचा। उन सब के साथ श्री राधा ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम किया। करोड़ों गोप गोपियां आ गए हैं किसलिए? राधा रानी के साथ जाने के लिए। तो फिर सबके साथ फिर राधा रानी ने कृष्ण को प्रणाम किया। तब 33 सखियां के साथ सुंदरी राधा श्री कृष्ण को मस्तक झुकाकर भूतल के लिए प्रस्थित हुई। वे सब के सब हरि के बताए हुए स्थान नंद गोकुल को गए। फिर राधा वृषभानु के घर में और गोपियां अन्य अन्य गोपों के घरों में गई। गोपियों सहित श्री राधा के भूतल पर चले जाने पर श्री हरि भी शीघ्र ही वहां पहुंचने के लिए उत्सुक हुए। ये कुत्ता बहुत भौंक रहा है, इसको चुप करा सकते हो या तो कुछ चपाती दो या कुछ करो, क्या करना। ये हरि मथुरा में जा पहुंचे। पहले देवकी और वसुदेव के जो जो पुत्र हुए उन्हें कंस ने तत्काल मार डाला। इस तरह उनके 6 पुत्रों को उसने मार डाला। देवकी का 7वां गर्भ शेषनाग कंस था, जिसे योग माया ने खींचकर गोकुल में निवास करने वाली रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर वो श्री हरि की आज्ञा से चली गई। तो इस तरह से मैंने कुछ बातें श्रीमती राधा रानी के बारे में आपको पढ़ के सुनाई है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है या कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूँगा। देखिए, ये सो जो बातें हैं ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार है। राधा रानी कौन है? कल ललिता देवी का आविर्भाव था, राधा रानी की 8 सखियों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं। तो हम लोगों ने उनकी चर्चा की थी, ललिता देवी की चर्चा की थी। तो राधा रानी हैं और उनकी सखियां हैं और कृष्ण हैं, ये अपने धाम गोलोक से आते हैं हमें बताने के लिए, हैं हमें बताने के लिए कि एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पर क्या नहीं है, मृत्यु नहीं है, जहाँ पर मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, हैं। लेकिन वैसे सब परिवार है, सब परिवार है, घर है, समाज है, घर मकान परिवार समाज सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है, मृत्यु नहीं है, बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, है? हमारा शरीर यहाँ बदल रहा है, बदल रहा है और बहुत तेजी बदल रहा है, और हम जन्म लेते हैं फिर मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, ऐसे लगातार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण लगातार हो रहा है। बहुत तेजी से ये शरीर हमारा बदलता जाता है, बहुत तेजी से बदल रहा है शरीर। वहाँ पर ये सब नहीं बदलता, शरीर है लेकिन बदलता नहीं शरीर है। जैसे कृष्ण बालक हैं तो हमेशा बालक रहते हैं, जो कृष्ण की माता हैं वो हमेशा उसी अवस्था में रहती हैं। कृष्ण के सखा हैं बालक अवस्था में हमेशा रहते हैं। तो ऐसा भी है संसार, एक ऐसा जगत है जिसकी सूचना भगवान ही हमको देते हैं, और गीता में उन्होंने संकेत दिया, गीता में उन्होंने संकेत दिया, जन्म यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, जहाँ जाकर कोई वापस नहीं आता वो मेरा परम धाम है। तो वहाँ अगर हम जाएं तो इस संसार में वापस नहीं आएंगे। अभी हम सोचते हैं इस संसार में रहना है, क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमें उस संसार का ज्ञान नहीं, उस जगत का ज्ञान नहीं है कि वो जगत कैसा है। लेकिन अगर हम उस जगत को जान लें तो इस संसार में हम नहीं रहना चाहते, हमें वहां जाना चाहिए। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य इदन्ति ये, बुढ़ापा और मृत्यु से छूटने के लिए जो मेरा आश्रय लेते हैं। गीता भगवान कहते हैं जो बुढ़ापा मृत्यु से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेते हैं। तो जो बच्चे हैं वो भी बूढ़े नहीं होना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर सबके आगे मौत खड़ी है, बुढ़ापा, मृत्यु है, सबके लिए है, सब के लिए इंतजार कर रही है, बुढ़ापा और मृत्यु, वृद्धावस्था। हम नहीं चाहते हैं तो वहां पर नहीं है, जो हम नहीं चाहते वहां पर नहीं है। भगवान कृष्ण राधा रानी से क्या कहा, अपनी इच्छा के अनुसार छोटी सी बालिका का रूप धारण कर लेना। तो राधा रानी का शरीर तो दिव्य है और युवती है, दिव्य युवती है राधा रानी, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार छोटी सी बालिका बन गई। तो ये आध्यात्मिक शरीर है, तो हमें ऐसा शरीर प्राप्त होना चाहिए। भगवान जब आते हैं इस संसार में तो वे हमें बताना चाहते हैं कि ये शरीर हमें नहीं पाना चाहिए, ये शरीर बहुत खराब है, इस शरीर में जो है ये सब जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी ये सब चल रहा है, ये भौतिक शरीर और बहुत अशुद्ध भी है, पसीना भी आता है ना, हड्डी है, मांस है, मलमूत्र है, सब कुछ है, अपवित्र भी है, अपवित्र भी है, अनित्य भी है और दुखों से भरा हुआ है और मृत्यु से बंधा हुआ है, अज्ञान से भरा हुआ है। लेकिन वहाँ जो शरीर होता है वो कैसा होता है, सच्चिदानंद। वहाँ पर शरीर कैसा होता है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जिसकी जो अवस्था है वो उसी अवस्था में रहेंगे, कितना अच्छा हो। माता हमेशा माता रहती है, बच्चा हमेशा बच्चा रहता है, और सुख जीवन में जो है सुख है। ये बहुत ही संसार दुखालयम कहा गया है, यहाँ दुखी दुख है। जो सुख दिखाई दे रहा है जब पास में जाते हैं तो वो दुख होता है, आपको दूर से दिखाई पड़ता है कि वो सुख है और मैं सुख भोगूंगा, और पास जाते हैं तो वो क्या होता है, वो दुख होता है। जैसे पतंगा है, आँख को देखता है तो उसको क्या दिखाई देता है, सुख, और जब जाता है आग में तो क्या होता है, जल जाता है, वो तो दुख है। तो जितने सुख दिखाई देते हैं भौतिक संसार में वो वास्तव में होते क्या हैं, दुख होते हैं। दूर से सुख दिखाई पड़ते हैं और जब पास में आते हैं तो दुख होता है, दुखी दुख है, दुख कालयम। सुख का भ्रम है और दुख का अनुभव, ये भौतिक संसार। और आध्यात्मिक जगत उल्टा है, आध्यात्मिक जगत दुख उल्टा है, वहां पर सब सुखी सुख है। जो सुख नहीं मालूम पड़ता है, दुख मालूम पड़ता है, वो भी पास में जाते हैं तो सुख है। तो ये जो ज्ञान है ये हम पूरे संसार को दे रहे हैं, और अगर इस ज्ञान को नहीं लेंगे तो इसी संसार में शरीर छोड़ेंगे और जन्म लेंगे और मरेंगे, जन्म मरण चलता रहेगा, इसी में सड़ते रहेंगे। तो हमें नहीं सड़ना है। तो कल राधा रानी का जो आविर्भाव दिवस आने वाला है तो हमें अच्छी तरह से उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए। राधा रानी का स्वभाव कृष्ण से भी ज़्यादा कोमल है। हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो भी दया, उनकी भी बहुत दया है, लेकिन राधा रानी उनकी कृपा शक्ति हैं, उनकी पूरी की पूरी कृपा जो है राधा रानी के रूप में प्रकट होती है। और राधा रानी जो है अगर प्रसन्न हो जाती हैं तो वे क्या कहती हैं कृष्ण से, ये कहती हैं कि ये मुझसे अच्छा भक्त है, आप इसको स्वीकार कर लो। हरि ओम, हरि ओम। हम तो बिल्कुल नालायक हैं, ये राधा रानी जब कृष्ण से कहती हैं कि ये मुझसे अच्छा है आप इसको स्वीकार कर लीजिए, तो कृष्ण फिर राधा रानी की बात को टाल नहीं सकते, तो कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं ना। और वैसे अगर हम कृष्ण की शरण लेंगे तो वे जो है हमारे गुण दोषों पर विचार करेंगे, न्याय के अनुसार जो है आपको कितना फल मिलना है और कितना दंड मिलना है कृष्ण विचार करेंगे। नहीं राधा रानी अगर प्रसन्न हो जाएं और राधा रानी कहें नहीं नहीं ये तो मुझसे अच्छा है राधा रानी से अच्छा कौन हो सकता है, हम तो हमें सब में हमारे अंदर सब बुराई बुराइयाँ हैं, कहाँ अच्छा ही है। राधा रानी क्या कहती हैं मुझसे अच्छा है ये, इसे आप स्वीकार कर लें तो कृष्ण फिर राधा रानी की बात को टाल नहीं सकते, है ना। तो इस तरह से हमें राधा रानी की शरण लेनी है, राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए और ऐसे दिन में उनकी कृपा का द्वार खुला रहता है। जैसे राधा रानी का आविर्भाव दिवस आ रहा है कल, तो उनकी कृपा का द्वार खुला है। आप जो है हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे तो हरा जो नाम है ये राधा रानी का ही है, तो इस दिन विशेष रूप से हमें जाप करना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ना चाहिए। कल बहुत पवित्र दिन है राधाष्टमी का, है ना, तो इसका लाभ उठाइए। इसी प्रकार से और भी आचार्यों के दिन होते हैं, कल ललिता देवी का आविर्भाव दिवस था, किसको पता है कल विशेष दिन था, आप लोगों के यहाँ किसी को पता नहीं कल विशेष दिन था, ललिता देवी का आविर्भाव दिवस था। आठ सखियाँ हैं राधा रानी की, उनमें से दो सखियाँ हमारे मंदिर में हैं, ललिता विशाखा, है ना। तो ऐसे दिन में जो है हमें इनकी कृपा मिलती है। और भी आचार्य हैं, हमारे आचार्यों के आविर्भाव आते हैं, तेरो भाव आते हैं, तो सब मालूम होना चाहिए हम लोगों को, उनके बारे में जानना चाहिए। हमारे वैष्णव कैलेंडर में सब लिखे रहते हैं। तो कल का जो दिन है वो बहुत ही पवित्र है, राधाष्टमी का दिन है, है? तो आप लोग जो है प्रार्थना करो, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना अगर आप नहीं जानते कि कैसे करने हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में एक प्रार्थना है। आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो उससे अपने आप आपकी प्रार्थना भगवान के पास जा रही है कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। दस प्रकार के नाम अपराध हैं, उनसे हमें बचना चाहिए, इसलिए हम लोग रोज दस प्रकार के नाम अपराध बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर बोलते हैं दस नाम अपराध, हम लोग यहाँ भी बोलते हैं। आप लोगों से कितने लोग आते हैं मंगल आरती में, हाथ उठाइए, बहुत कम लोग आते हैं। अगर आप लोग नहीं आते हैं तो भी दस नाम अपराध आप यहाँ से ले लीजिए या कहीं से ले लीजिए, कहीं किताब में भी लिखे हुए हैं, अलग से भी पर्चा होगा है नाम अपराध का, तो ले लीजिए। दस नाम अपराध डेली पढ़िए, रोज बोलना है। यहाँ जैसे बोला जाता है बोलते हैं, यहाँ पर बोला जाता है, यहाँ पर रोज बोला जाता है, तो दस नाम अपराध रोज बोलिए, अपने घर में बोलिए, माला पर जप करिए। आप लोगों में से कितने लोग माला पर जप करते हैं, माला पर जप करते हैं लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का होना चाहिए जप, माला पर जप करते हैं कोई दूसरा मंत्र वो नहीं, क्योंकि जो हरे कृष्ण मंत्र है ये कलयुग में बताया गया है महामंत्र, कलयुग में ये महामंत्र बताया गया है। वैसे मंत्र तो बहुत से हैं, हे हरि बोल, आप लोग बातें कर रहे हैं, वैसे मंत्र बहुत से हैं लेकिन महामंत्र ये 16 नाम का, द्वात्रिंशदक्षरम मंत्रम नाम षोडशकान्वितम कलो युगे महामंत्र सम्मतो जीव तारिणी, जिसमें 32 अक्षर हों और 16 नाम हो वो मंत्र कलयुग में महामंत्र कहलाता है। अब आप विचार करिए, कोई और मंत्र है जिसमें 32 अक्षर हों और 16 नाम हो, नहीं। इसमें है कितने अक्षर हैं? 32 अक्षर है और 16 नाम है। द्वात्रिंशत् अक्षरम मंत्रम नाम षोडशिकान्वितम कलयुगे महामंत्र सम्मतो जीवतारिणे। कलयुगे वो महामंत्र है जो कि शास्त्र सम्मत है जीवों का उद्धार करने के लिए। उत्सृज्यतन महामंत्रम ये तुन्यत कल्पितम पदम महानामेति गायन्ति ते शास्त्र गुरु लंघिना। इस महामंत्र को छोड़ करके अपनी कल्पना से किसी भी पद को महामंत्र का जो नाम देंगे वो गुरु और शास्त्र का उल्लंघन करेंगे। तो कोई दूसरा मंत्र जो है महामंत्र नहीं है, लेकिन ये हरे कृष्ण मंत्र जो है कलयुग का महामंत्र है। भाई कलयुग चल रहा है, ये मैं सोचिए कि नहीं कोई दूसरा युग चल रहा है या अभी कलयुग समाप्त होकर के दूसरा युग आने वाला है, ऐसा नहीं है। ये कलयुग की जो अवधि है ये बहुत लंबी है। पता है कितने साल का कलयुग होता है? 4,32,000 साल का कलयुग। तो जल्दी नहीं समाप्त होगा 4,32,000 साल। अभी तो कितने समय बीता है? 5,000 साल ही बीता है कलयुग के। 4,27,000 साल अभी बचा है। इसलिए ये मत सोचिए कि नहीं अभी कुछ समय के बाद दूसरा युग आ जाएगा तो मंत्र बदल जाएगा। अभी यही मंत्र चलेगा, 4,27,000 साल तक यही मंत्र चलना है। और अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं करोगे तो कितने बार आपको जन्म लेने पड़ेंगे इस कलयुग में, कितने बार जन्म लेने पड़ेंगे। तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए। भक्तों का संग करिए, 4 नियम का पालन करिए, 10 नाम अपराध रोज बोलना है। अगर आप अपराधों से बच करके अगर नाम लेते हैं तो नाम की तो बहुत बड़ी शक्ति है। एक नाम में ही आपके सब पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन चूंकि अपराध होता है नाम का, इसलिए एक नाम से काम नहीं चलता। फिर हमें नाम लेना पड़ता है लगातार। नामापराध युक्ता नाम नामानेव हरंत्यगम। जब नाम का अपराध होता है तो नाम से ही हमारा पाप दूर होगा। लेकिन कैसे? अविश्रांत प्रयोक्तानी, बिना विश्राम के लगातार करो। कम से कम 16 माला जाप करो और लगातार जितना आप कर सकते हो हरे कृष्णा परिश्रम करना है आपको। इस हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने में आपको परिश्रम करना है। 16 माला अगर करते हैं रोज है? अविश्रांत प्रयोक्तानी तान्येव अर्थ करानी चाह, तभी कुछ अर्थ निकलेगा इस नाम का। नहीं तो नाम का तो महात्म्य है। नाम का महात्म्य है कि नामनोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत पापम न शक्नोति कर्तुम पातकी जना। तावत कर्तुम न शक्नोति पापम पातकी जना। नामनो सियावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे। तो भगवान के नाम में पाप हरण करने की इतनी शक्ति है, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। उतना पाप तो पापी व्यक्ति कर भी नहीं सकता। जितनी नाम में पाप दूर करने की शक्ति है उतना पाप तो पापी भी नहीं कर सकता। लेकिन ये बात तभी लागू होती है जब अपराध ना हो। लेकिन अपराध होता है तो फिर नाम में जो है पाप करने की शक्ति उस तरह से नहीं होती है। तब फिर कैसे पाप दूर होगा? नामानी एक नाम से नहीं होगा, लगातार नाम लगातार लगातार लगातार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। इस तरह से आपको लगातार लगातार उसी में जो है आपको रचे पचे रहना है, घिसना 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 है ना, इसी में ही जो है जैसे चंदन घिसते हैं है ना, तो घिस 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 घिसते रहते हैं, ऐसे हरे कृष्णा इस तरह से मन को लगातार घिसना है और चमकाना है, शुद्ध करना है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण साफ होगा। अपराध होता है तो नाम जो है हमें लगातार लेना पड़ता है, अपराध नहीं होता है तो एक नाम में ही जो है पूरी शक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा तो एक नाम में ही द्रौपदी का कष्ट दूर हो गया, हमारा नहीं होगा, क्यों? हमारा अपराध है। अपराध रहित नाम लेने से अजामिल का भी, अजामिल बहुत पापी था, पाप कर रहा था, यह अपराध नहीं हो रहा था उसका। इसलिए यमदूत आए और उसने अपने पुत्र को बुलाया नारायण, शुद्ध नाम भी नहीं है, अपने पुत्र को नारायण बोल रहा है तो शुद्ध नाम भी नहीं है, लेकिन तो भी अपराध नहीं हुआ उसका, तो इसलिए वो सब पापों से मुक्त हो गया, उसकी रक्षा हो गई। यमदूतों को विष्णु दूतों ने आकर के रोक दिया कि नहीं, ये नरक नहीं जा सकता। इसलिए नाम में पापों को दूर करने की तो असीम शक्ति है, इतने पाप आप कर भी नहीं सकते, लेकिन अगर अपराध ना हो तो, लेकिन अगर अपराध होता है तो फिर वो आपके पाप दूर नहीं होते है ना। तो इस तरह से हमें जो है नाम लेना है, तो कल बहुत विशेष दिन है, है? ना जी,
सृष्टि से पहले ये जो नित्य जीव है या मुक्त जीव है वो तो आध्यात्मिक लोक में थे, लेकिन जो बद्ध जीव है उनकी स्थिति क्या थी?
फिर से पूछे क्या?
सृष्टि की उत्पत्ति से पहले नित्य जीव है या मुक्त जीव वो तो आध्यात्मिक लोक में थे, लेकिन बद्ध जीव की स्थिति क्या थी, वो कहा?
नहीं, ऐसा है कि सृष्टि से पहले, आप कहते हैं सृष्टि से पहले, तो सृष्टि से पहले की जो बात है तो ये कोई बात नहीं है सृष्टि से पहले, क्योंकि सृष्टि से पहले प्रलय, फिर उससे पहले सृष्टि, ये सृष्टि प्रलय का क्रम तो लगातार चल रहा है। और सृष्टि से पहले जो प्रलय हो, प्रलय थी, सृष्टि से पहले प्रलय थी, तो प्रलय में सब जीव कैसे हैं? सुप्त अवस्था में है, सुप्त अवस्था में, तो हम ही लोग जो है प्रलय के समय सुप्त अवस्था में होते हैं और सृष्टि के समय फिर शरीर अपने पिछले सृष्टि के अनुसार जो कर्म किए हैं उसके अनुसार शरीर प्राप्त कर लेते हैं। सृष्टि के पहले प्रलय, ये भौतिक संसार क्या है? सृष्टि और प्रलय ही है ना। तो प्रलय काल की जो अवस्था है वो सुप्त अवस्था जैसी होती है, और जब सृष्टि होती है तो फिर से हमें शरीर प्राप्त होते हैं, तो पिछली सृष्टि में जो हमारे कर्म थे उसके अनुसार फिर से हमें वो शरीर प्राप्त हो जाते हैं। अब समझे, इस तरह से कर्म नहीं है हमारे खत्म होते, सृष्टि के बाद प्रलय, फिर से प्रलय होगी। ब्रह्मा जी की रात वो कहलाती है। ये सृष्टि का जो समय है ये ब्रह्मा जी का दिन होता है, 1000 चतुर्युगी का जो समय है ये सृष्टि का समय होता है। 1000 चतुर्युगी का मतलब है 4,32,00,000,000 साल, ये ब्रह्मा जी का दिन है, ब्रह्मा जी की 12 घंटा, और इतनी बड़ी रात होती है ब्रह्मा जी की, 4,32,00,000,000 साल की रात होती है, तो प्रलय का समय होता है। तो प्रलय के समय जितने जीव हैं उनको शरीर नहीं प्राप्त होता है, तो कुछ सुप्त अवस्था जैसी अवस्था रहती है, तो उस समय उनका जो कर्म का जो हिसाब है वो बंद नहीं होता। जितने भी जीव हैं उनके कर्मों के हिसाब बंद नहीं होते। आप सोचते कि नहीं, सृष्टि के पहले हम भगवान के पास थे, हम भगवान में मिले हुए थे, ऐसा नहीं है। तो हम जो है अगर बद्ध जीव हैं तो सृष्टि के पहले प्रलय की अवस्था में हम सुप्त अवस्था में थे, और सृष्टि के समय फिर हमें कर्म के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं और कर्म होते हैं, और फिर जन्म मरण चलता रहता है। 4,32,00,000,000 साल तक जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। और जब ब्रह्मा जी की रात आती है, प्रलय का समय होता है, तो उस समय जो है जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। चक्र समाप्त नहीं होता, लेकिन कुछ समय के लिए रुक जाता है, वो रुक जाता है। तो ये नित्य बद्ध, ये जो जितने जीव हैं इस भौतिक संसार में नित्य बद्ध हैं। लेकिन नित्य बद्ध का ये मतलब नहीं है कि पहले हम भगवान के पास नहीं थे, हम कभी तो गिरे भगवान के धाम से, हम गिरे और हम जब अब अगर जाएंगे वहाँ तो वापस नहीं आएंगे। हमें जो है अभी मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, इस हम मनुष्य जीवन का लाभ उठा लें, और अगर हम भगवान के धाम चले जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये संदेश है भगवान का। हाँ जी, हम वहाँ से गिरे अलग बात है, हम वहाँ से वापस नहीं आएंगे अलग बात है। आपने आग में हाथ डाला है, ये अलग बात है, अब दोबारा आग में हाथ तो नहीं डालोगे। क्या आप ऐसा तर्क करोगे कि मैंने एक बार आग में हाथ डाला तो दोबारा भी डालूंगा? आप खुद ही बताइए, आप खुद ही बताइए। ये आपको कोई और नहीं बताएगा, आपको खुद ही पता है, आपको खुद पता है। आपको एक बार अनुभव हो गया आग में हाथ डालने का, तो आप खुद आग में हाथ डालोगे? कोई दूसरा कहेगा नहीं डालोगे, आपको नहीं नहीं मैं नहीं डालूंगा, मैं नहीं डालूंगा। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, ये तो समझने की बात है, आप खुद समझें। ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? देखो, एक दोहा मुझे याद आ रहा है, हमने पढ़ा था कभी विद्यार्थी जीवन में, तो बिहारी कवि का बनाया हुआ दोहा है, उसमें बड़ा सुंदर अर्थ छिपा हुआ है। एक दोहे के अंदर जो है मतलब कैसे अर्थ उसमें भरे हैं, राधा कृष्ण के बारे में एक दोहा है, सुनना है आप लोग। हरि बोल। ये कौन बातें कर रहा है? अभी बातें मत करिए, मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ और आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक दोहा सुनाऊंगा आपको, ये बिहारी का लिखा हुआ, बिहारी नाम के कवि ने एक दोहा लिखा है, शायद आप लोग जानते हो, हमने भी पढ़ा था, आपने भी पढ़ा हो। एक दोहा है, चिर जीवो जोरी जुगे, चिर जीवो जोरी जुगे, क्यों ना स्नेह गंभीर। क्या मतलब चिर जीवो? चिर जीवो का मतलब है कि आप दोनों चिरकाल तक जीवित रहो, आशीष आशीर्वाद है। राधा कृष्ण को आशीर्वाद दे रहा है भक्त, और भगवान जो है आशीर्वाद लेते भी हैं। अब भगवान को आशीर्वाद लेने की जरूरत थोड़ी है, लेकिन भक्त भगवान को आशीर्वाद देता है तो भगवान जो है आशीर्वाद लेते हैं। तो आशीर्वाद दिया, चिर जीवो, कि तुम दोनों चिरंजीवी हो। जोड़ी जुगे, जोड़ी जुगे यानी जुगल जोड़ी, किनकी? राधा कृष्ण की। चिर जीवो जोड़ी जुगे, क्यों ना स्नेह गंभीर। गंभीर स्नेह क्यों नहीं होगा तुम दोनों में? एक दूसरे के प्रति तुम्हारा स्नेह गंभीर क्यों नहीं होगा? होना ही चाहिए। क्यों? को घटी जे वृष भानु जा, को घटी जे वृष भानु जा है? कि ये तो वृष भानु जा है, वृष भानु की पुत्री हैं। राधा रानी कौन है? वृष भानु की पुत्री हैं। और जे हलधर के वीर, और जे यानी कृष्ण जी कौन है? हलधर के वीर यानी प्यारे, हलधर माने बलदेव जी, बलदेव जी के प्यारे हैं। एक अर्थ तो ये हो गया। अब देखो दूसरा अर्थ बड़ा गहरा है। दूसरा अर्थ क्या है? को घटी जे वृष भानुजा, वृष भानुजा ये शब्द जो है दो तरीके से तोड़ा जाता है। एक तो वृष भानुजा यानी वृष भानु की पुत्री, और दूसरी तरीके से तोड़ा जाता है वृषभ अनुजा। वृषभ माने बैल, और अनुजा, अनुजा का मतलब छोटी बहन, अनुजा का मतलब छोटी बहन। तो वृषभ की अनुजा यानी बैल की छोटी बहन, बैल की छोटी बहन यानी बचिया है। तो ये बैल की छोटी बहन यानी बचिया है। राधा रानी को कहा गया वृष भानुजा, वृषभ अनुजा ये बैल की छोटी बहन यानी बचिया है। और जे हलधर के वीर, और ये हलधर किसान, हलधर का मतलब किसान भी होता है। हलधर का एक अर्थ होता है बलराम जी, और दूसरा हलधर का मतलब क्या होता है? किसान। किसान के वीर यानी प्यारे क्या है? बछड़ा। किसान का प्यारा कौन होता है? बछड़ा। तो ये बछड़ा है, कृष्ण को कहा गया है हलधर के वीर यानी ये बछड़े हैं, वो बछड़ी है बछिया और ये बछड़ा, तो प्रेम क्यों नहीं होगा है? चमत्कार है ना, अर्थ कितना चमत्कार है, है? चिरजीवो जोरी जुगे क्यों ना स्नेह गंभीर है, चिरंजीवी होए ये जोड़ी, जुगल जोड़ी है चिरंजीवी हो, क्यों स्नेह गंभीर क्यों नहीं होगा। एक तो वृष भानु की पुत्री है ये, और दूसरी वृषभ की अनुजा यानी बचिया, और ये हलधर के वीर बलदेव जी के प्यारे हैं, और दूसरा हलधर माने किसान के प्यारे यानी बछड़ा। तो एक बछिया है एक बछड़ा है, तो प्रेम क्यों नहीं होगा, है ना। एक राधा रानी के बारे में एक और दोहा है। अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना ये दोहा जो मैंने सुना है? हाँ तो सही, नहीं सुना। अच्छा, एक और दोहा है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, इसमें भी बड़ा चमत्कार है, अर्थ का बड़ा चमत्कार है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, भव बाधा यानी भव यानी जन्म मरण की बाधा, ये जन्म मरण बहुत बड़ी बाधा है हमें संसार में, क्या भव की बाधा से बहुत परेशान हो रहे हैं जन्म मरण। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, नागरी नागरी माने जो चतुर है, तो वही चतुर राधे का मेरी भव की बाधा को हरण करो है। इसका तो अर्थ एक ही है, लेकिन अब दूसरी पंक्ति है उसके तीन अर्थ निकलते हैं। दूसरी पंक्ति क्या है? जातन की झाई परत श्याम हरित दुति होए, जातन की झाई परत, जातन की यानी जिनके शरीर की छाया पड़ने से, किनके? राधा रानी की, राधा रानी के शरीर की छाया पड़ने से श्याम हरित दुति होए। तो श्याम का अर्थ, एक तो श्याम का मतलब काली माँ, कालापन यानी पापों के जो कालापन है वो दूर हो जाएगा और प्रकाश पैदा हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश पैदा हो जाएगा। तो जिनके शरीर की छाया पड़ने से हमारे पापों की काली माँ सब दूर हो जाएगी, श्याम हरित और दुति होए यानी ज्ञान का प्रकाश पैदा हो जाएगा। एक अर्थ ये हो गया। अब दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है जातन की झाई परत यानी राधा रानी के शरीर की छाया पड़ने से श्याम हरित, श्याम माने श्याम का अर्थ दूसरा क्या है? कृष्ण। तो श्याम की जो है हरी ज्योति हो जाती है, श्याम का जो है जो रंग है वो क्या है? नीला है, और राधा रानी का रंग पीला है, तो नीला और पीला मिलकर के क्या हो जाता है? हरा। तो श्याम हरित द्वितीय होए, तो राधा रानी का जो पीला रंग है और श्याम का नीला रंग है, मिलकर के क्या हो जाता है, हरित द्वितीय होए, यानी हरा रंग बन जाता है। जातन की झाई परत श्याम हरित द्वितीय होए, है चमत्कार है, है? फिर तीसरा अर्थ है, तीसरा अर्थ क्या है, जातन की झाई परत है, इन्हें राधा रानी के शरीर की छाया पड़ने से श्याम हरित द्वितीय होए, श्याम हर्षित हो जाते हैं, हरित का मतलब है हर्षित, श्याम में जो है हर्ष की ज्योति हो जाती है, यानी प्रकाश, हर्ष का प्रकाश पैदा हो जाता है, श्याम यानी कृष्ण हर्षित हो जाते हैं। तो देखो तीन अर्थ निकलते हैं, हैं कि बिहारी के दोहे ऐसे हैं, है ना। तो इस तरह से हमने आपसे कुछ राधा रानी की चर्चा की, ठीक है, धन्यवाद। श्रीमती राधा रानी राधा कथा महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण। अब प्रश्न का समय नहीं है, अब समय